Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Binu pag chale, humko chalne ke liye pair chahiye. Hum to bade kamzor aadmi hain. हम लोग बहुत कमजोर आदमी है, क्योंकि हमको चलने के लिए क्या चाहिए? पैर चाहिए. हम बहुत कमजोर आदमी है, सुनने के लिए क्या चाहिए? कान चाहिए. हम लोग बहुत कमजोर आदमी है, देखने के लिए आंख चाहिए, बोलने के लिए वाणी चाहिए, सूंघने के लिए नाक चाहिए. लेकिन जो तत्व है, आत्म तत्व, ईश्वर तत्व, उसको चलने के लिए पैर की जरूरत नहीं है, और उनको भी चलने के लिए पैर की जरूरत पड़े तो हमारे और उनमें क्या अंतर है? फिर हमारे में और उनमें क्या अंतर है? इसलिए बोले कि नहीं, बिनु पग चले, वो चलता है बिना पैर भी. अब वो कैसे चलता होगा देख लीजिए आप. सुने बिनु खाना, छू दिया और शब्द निकल गया. आश्चर्य तत्वशी महावाक्य, प्रहलाद को छू दिया, नाखून का स्पर्श हुआ, नख स्पर्श, और वहां तत्वशी महावाक्य निकला. आपको बोलने के लिए वाणी की आवश्यकता है. तत्वशी इतना भी वाक्य बोलना हो तो आपको जीवा की जरूरत है. और भगवान ने यूं छू दिया, और छूते ही वह तत्वशी महावाक्य प्रकट हुआ, और उसके अंदर का, प्रहलाद के अंदर का अज्ञान सहकृत जो शोकादि प्रपंच था वो सारा मिट गया. इसलिए एक ही समय में वो क्रिया का भी आधार है और वो अक्रिया का भी आधार है. अक्रिया उसकी वस्तु स्थिति है और क्रिया उसमें भासमान है. अब आप ध्यान देना, उस तत्व में अक्रियता उसका स्वभाव है, निष्कर्म उसका स्वभाव है, और क्रिया उसमें भासमान है. उस तत्व का अक्रियत्व, क्योंकि आपने अभी तक उनके बारे में सुना, तत्व के बारे में सुना कि वो क्रिया रहित हैं, व्यापकत्व, व्यापक है उसमें क्रिया नहीं. इसलिए अक्रियता उस ब्रह्म तत्व का स्वभाव है, स्वरूप है. जैसे आप सुनते हैं ना, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ऐसा तो अक्रिया उसका स्वभाव है, और उसमें क्रिया जो है ना भासमान है. अब मैं आपको एक दृष्टांत में सुना देता हूं, बहुत जल्दी समझ में आएगी बात. आप सो रहे हैं, और सोते समय आपने स्वप्न देखा, आप ओलंपिक दौड़ दौड़ रहे हैं, और आप जीत भी गए. कितना तेज दौड़े आप, बहुत तेज दौड़े, और ओलंपिक में आपने पदक जीत लिया, और वो भी स्वर्ण पदक जीत लिया. तो आप जब जग गए, तो जगने के बाद आपकी आपके अंदर क्रिया है कि नहीं? अरे आप हांप रहे थे, आप स्वप्न में हांप रहे थे भैया, कितनी खुशी थी, आहा, और हांपते हांपते आंख खुल गई. तो जब आप जग जाते हैं तो उसमें थोड़ा तो हांफना होगा, बहुत थोड़ा तो वो जो क्रिया आपके अंदर दिखाई दे रही थी, इसको बोलते हैं भासमान. वो क्रिया क्या है? भासमान है. आप बोलते भैया वो नहीं, वो तो स्वप्न था. वो क्रिया जो है ना भासमान, और आपका जो मूल रूप है वह अक्रिया. आप अक्रिय हैं, लेकिन उसके अंदर स्वप्न की भासमानता थी. केवल आप मालूम पड़ रहे थे कि थे, चलते हुए मालूम पड़ रहे थे, लेकिन चलते हुए नहीं. और इस समय आपके अंदर जो क्रिया हो रही, वो आप तत्व दृष्टि से देखना, ये क्रिया के आधार आप है कि नहीं. राजा रघुगण और भरत, जड़ भरत पालकी में लगाए गए, और ऊपर बैठे हैं कौन? राजा रहोगन और ज्ञानी पुरुष को लगा दिया है, पालखी में ढुलवा दिया है। और वो बार बार बोलने लगे, ढंग से चलो भाई, ढंग से चलो, ढंग से चलो, ये क्या टेढ़ा मेढ़ा चल रहे हो, और तुम ढंग से नहीं चलोगे तो तुम्हारे हम दवा करेंगे। दवा करेंगे मतलब दंड देंगे। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, उन्होंने कहा कि ये जो पैर है ना, ये चलने वाले के लिए हैं, और मैं तो बिना चलने वाला आदमी, ये रास्ता है, ये पैरों के लिए हैं, और मेरे पास तो पैर ही नहीं है, तो कौन चलेगा फिर। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोली, अक्रिय आत्म तत्व की बात बोली, मैं तो अक्रिय हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ये भार जो है ना ढोने वाले के लिए है, पैर चलने वाले के लिए हैं, रास्ता चलने वाले के लिए हैं। और बोले मैं तो शरीर नहीं हूं, तो ढोने वाला कहां से पैदा होगा, चलने की क्रिया का कर्ता मैं नहीं हूं, चलने वाला मैं नहीं हूं। अपने अक्रियत्व की बात बोली वहां राजा रघुगन, मैं अक्रिय हूं, और वहां चलना तो प्रतीत हो रहा है। अब मैं थोड़ा आगे ले जाता हूं, जड़ भरत में क्रिया मालूम पड़ रही है, जड़ भरत चल रहे हैं कि चलते हुए मालूम पड़ रहे हैं, जड़ भरत चलते हुए मालूम पड़ रहे हैं, लेकिन उसके अंदर चलन क्रिया नहीं है, चलन क्रिया भासमान है। आप ज्ञानी के अंदर क्रिया आपको जो दिखाई देती है वो आपकी दृष्टि में दिखाई देती है कि ज्ञानी की दृष्टि से दिखाई देती है, हमारी दृष्टि से। इसलिए भगवान ने सावधान किया गीता जी के पांचवें अध्याय में, पश्यं श्रृण्वन् स्पृशं जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपयं श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणिन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। ज्ञानी पुरुष देखता हुआ भी नहीं देखता है, वो खाता हुआ भी नहीं खाता है, वो सूंघता हुआ भी नहीं सूंघता, वो स्पर्श करता हुआ भी स्पर्श नहीं करता है। और भगवान ने कहा वो आंखें पलके जो गिरती हुई मालूम पड़ रही है ना, वो भी ज्ञानी में नहीं होते, ये भासमान है। जैसे कि रज्जु में सर्प, शुक्ति में रजत, जैसे स्वप्न पदार्थ होते नहीं लेकिन वो भासते हैं। इसलिए ज्ञानी अपने आप को अकर्ता समझता है, अभोक्ता समझता है। ज्ञानी कर्ता होता हुआ भी अकर्ता होता है, और अज्ञानी जो है ना कर्ता होता हुआ भी कर्ता, और अकर्ता होता हुआ भी कर्ता, और ज्ञानी कर्ता होता हुआ भी अकर्ता होता है, क्योंकि वहां पर भासमान उसके लिए तो स्वप्न है, एक अधिष्ठान तत्व, उसी तत्व में क्रिया भी और उसी तत्व में क्रिया का अभाव भी, और इसी को मिथ्यात्व बोलते हैं। अद्वैत सिद्धि ब्रह्म सूत्र आदि ग्रंथों में है ना, तद अभाववती तत्प्रकार को अनुभव अयथार्थ ऐसा बोला है। उसी वस्तु में जहां पर प्रतीयमान वस्तु है उसी में उसका अभाव हो तो समझना कि वो मिथ्या है, वो अनिर्वचनीय है, वो भासमान है, वो प्रातिभाषिक है। इस चीज को आप थोड़ा सा समझ लेंगे। जैसे स्वप्न पदार्थ है, स्वप्न का दृष्टांत वेदांत को और वेदांत की प्रक्रियाओं को समझने के लिए बहुत उत्तम है। जहां वस्तु प्रतीति प्रतिमान हो, जहां वस्तु की प्रतीति हो वहां पर वस्तु ना हो, उसको बोलते मिथ्या, उसको बोलते भासमान। जैसे कि रज्जू में सर्प दिखाई दे रहा है लेकिन वहां पर नहीं है, शुक्ति आपको चमक रही थी चांदी की तरह, जहां पर रजत की चांदी की प्रतीति हो रही थी वहीं पर उसका अभाव था। माने जो अपने अभाव के अधिकरण में दिखाई दे, अपने अभाव के अधिकरण में वस्तु दिखाई दे उसी को बोलते हैं भासमान। दिखाई दे केवल लेकिन वो वस्तु वहां पर हो नहीं, बस 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 यहां पर यही बात है कि उसी तत्व में क्रिया दिखाई दे रही है, उसी तत्व में क्रिया का अभाव दिखाई दे रहा है। और अपने को समझना है कि मेरे में क्रिया केवल दिखाई दे रही है, ये वास्तविक क्रिया मेरे में भी नहीं है। आप शरीर के अंदर है कि आपके अंदर शरीर है? एक बार मैंने पूज्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी दिव्यानंद गिरिजी महाराज, जो वो स्वर्गाश्रम में रहा करते थे, हम उनके विद्यार्थी रहे हैं, प्रस्थानतरी का अध्ययन, नव्य न्याय का, व्याकरण का अध्ययन उनके पास किया हमने। जो साधना काल उसके बाद जब हम साधना करने लगे तो महाराज श्री को मैंने पूछा कि आप अपनी कोई अनुभूति बताइए। वो थी ना बात, यद पश्यसी तद्वद, कोई शास्त्र की बात नहीं, आप अपनी कोई अनुभूति, तो बहुत अच्छी बात बताए। बोले कि मैं वेदांत का चिंतन करता था, उस समय ऐसा अनुभव होता था कि जैसे मैं बहुत बड़ा हूं, मैं जैसे उदाहरण बताया, जैसे कोई आपका स्टोर रूम है, तो स्टोर रूम में बहुत सारी चीजें पड़ी होती, बहुत सारी चीजें, कुछ कहीं यहां पड़ा है, कुछ वहां वहां वहां, बहुत बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं। बोले वैसे मेरे को ऐसा अनुभव होता था कि मैं इतना बड़ा हूं, इतना बड़ा हूं, और वो दुनिया के सारे शरीर मेरे अंदर है। हम लोगों को क्या अनुभव होता है? शरीर के अंदर हूं, ऐसा अनुभव होता है कि हमारे मेरे अंदर शरीर, ऐसा अनुभव होता है। भाई आप ब्रह्म तत्व है ना, आप क्या है? आत्म तत्व है। तो आत्म तत्व है तो आपको अनुभव कैसा होना चाहिए? मैं शरीर के अंदर हूं, ऐसा अनुभव होना चाहिए कि मेरे अंदर शरीर है, ऐसा अनुभव होना चाहिए? तो होना क्या चाहिए? हमें तो यही होना चाहिए कि मेरे अंदर ये शरीर है, मैं तो व्यापक हूं ना, मेरे अंदर ये शरीर भी है, और ये हजारों ये जो शरीर दिखाई दे रहे हैं वो किसके अंदर है? ईमानदारी तो यही है कि भाई सारी दुनिया आपके अंदर, और ये चंद्र, सूर्य, नक्षत्र, तारा, अंगन, सातों समुद्र, ये किसके अंदर है? ये अच्छे लोग किसके अंदर है और बुरे लोग? अरे वो भी मेरे अंदर है, अच्छे लोग भी मेरे अंदर और बुरे लोग भी मेरे अंदर है, क्योंकि मैं तो आत्मा हूं व्यापक। तो उस समय ऐसा अनुभव होता था उन्हें कि सारी दुनिया के शरीर मेरे अंदर, और ये मेरा शरीर भी उसी के अंदर। अच्छा बता, आपका शरीर कौन सा है? जब दुनिया के सारे शरीर आपके अंदर हैं, तो फिर आपका शरीर कौन सा है? बहुत मुश्किल है, आप अंगुली निर्देश नहीं कर सकते हो कि ये मेरा शरीर है। ये ज्ञानी को जब सर्वात्म भाव हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, तो ज्ञानी को ऐसा नहीं लगता कि ये शरीर मेरा, भैया यही क्यों आपका शरीर? क्योंकि आप तो व्यापक हो, व्यापकता की अनुभूति, सब कुछ आप हैं, फिर आपका शरीर कौन सा? बहुत मुश्किल है। इसलिए ज्ञान बहुत ऊंची चीज है, ज्ञान से परे कोई चीज नहीं है। आप बोलते हैं ना कि वेदांत सर्वोच्च शास्त्र है, आप सर्वोच्च अनुभूति में आप प्रवेश करते हैं तो वो बहुत गजब की अनुभूति है। आप अनुभव करते हैं सब कुछ मैं हूं, सब कुछ मैं, मेरे अंदर सब कुछ, मेरे अंदर है, मेरे अंदर मैं इतना व्यापक। कौन सी चीज आपकी? फिर कौन सा शरीर आपका? सारे शरीर आपके। रामकृष्ण परमहंस को विवेकानंद जी महाराज जी ने कहा कि भगवान आप तो मां के उपासक है, मां आपकी बात मान जाएगी, आप मां से प्रार्थना करो कि आपका कैंसर ठीक हो जाए, आप अच्छी तरह से खा भी नहीं पा रहे। रामकृष्ण परमहंस ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, उन्होंने कहा बेटा ये दुनिया के सारे शरीर तो मेरे ही हैं, तुम क्या समझते हो? क्या मैं इसी मुख से खाऊं? तुम तो सोचते हो कि मैं इसी मुख से खाऊं, अनंत जो मुख है वो मेरे मुख अनंत मुखों से मैं खा रहा हूं। ये ज्ञानी का अनुभव है, ज्ञानी का अनुभव। वो अनंत आंखों से देख लेता है, अनंत कानों से सुन लेता है, वहां भेद नहीं रहता। उसके सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद, आप जो श्रुति गाते हो ना वही तो है और क्या है। इसलिए चलने वाला भी वही और नहीं चलने वाला भी। अच्छा, जब हजारों पैर आपके हैं तो सारे पैर चल रहे हैं क्या? सारे पैर नहीं चल रहे हैं क्या? एक ही समय में आप चल भी रहे हैं और उसी समय आसीन है, आप किसी न किसी रूप में बैठे भी हैं और किसी न किसी रूप में एक ही समय में, एक ही समय में। आप ध्यान देना, आसीन है वो बैठे भी हैं और दूरम रजति जा भी रहे हैं। आप किसी रूप में जा भी रहे हैं और किसी रूप में बैठे, आप खा भी रहे हैं और आप नहीं भी खा रहे। शयानु याति सर्वतः, आप सो भी रहे हैं और सोते हुए सर्वत्र पहुंच भी रहे हैं। शयानो याति सर्वत्र, कष्टम मदा मदम देवम। आप उसमें सुख और दुख ये दोनों से परे हैं। आप वो ऐसा पुरुष जिसकी अनुभूति है उस तत्व की, वो तत्व ऐसा है, उस तत्व की अनुभूति ऐसी है। आप उसमें सुखी होगा कि दुखी होगा? वो नारायण वहां न सुख है और न वहां दुख, वहां सुख भी है और वहां दुख, वो दोनों से परे भी है और वो दोनों भी हैं। जब कपिल भगवान मां को उपदेश कर रहे थे तो कपिल भगवान ने मां को यही बोला, मां सुख और दुख की अत्यंतिक निवृत्ति ही मोक्ष है। अब हम लोगों को जब प्रक्रिया में बोला जाए ना, प्रक्रिया में वेदांत की प्रक्रिया माने ए बी सी डी ऐसा है ना, वेदांत की जो प्रक्रिया आपको सिखाया जाता है ना, तो वहां आपको बताया जाता है ए बी सी डी ऐसा होता है कि नहीं? जब आप पहली बार जब स्कूल जाते हैं तो आपको बताया जाता है एक दो तीन चार ए बी सी डी सिखाई जाती है। तो आपको वेदांत की ए बी सी डी जब सिखाई जाती है तो यही सिखाया जाता है। मोक्ष क्या है भाई? बोले परमानंद की प्राप्ति, संसार दुख की निवृत्ति। ओहो, हम तो बड़े खुश हो गए जब हमने पहली बार जब वेदांत में पढ़ा संसार दुख की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति। तो परम आनंद कैसा होगा फिर? तो हम लोग कल्पना करते थे कि परम आनंद कोई ऐसा ज्ञान होने के बाद समुद्र होगा, उसमें हम डुबकियां लगा देंगे, बहुत भयंकर गर्मी हो और बहुत ठंडा ठंडा जल और उसके आहा डुबकियां लगाएंगे, आनंद आ गया। ये तो आपको ए बी सी सच्चिदानंद, सच्चित आनंद अपने को लगता हो सच्चिदानंद, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि वो सत इसलिए कहा क्योंकि असत नहीं है। उसको सत इसीलिए बोला क्योंकि ये कहना था शास्त्र को कि वो असत नहीं है। उसको चित इसीलिए कहा क्योंकि वो जड़ नहीं है। और आनंद इसीलिए कहा क्योंकि वो दुख नहीं है। दुख का व्यावर्तन करने के लिए उसको आनंद बोला, जड़ता का व्यावर्तन करने के लिए उसको चित बोला, असत का व्यावर्तन करने के लिए उसको सत बोला। लेकिन प्रारंभ में आपको साधना में प्रवृत्त करने के लिए बोला गया कि वो सत है, वो चित है, वो आनंद है। और मोक्ष क्या है? परमानंद की प्राप्ति और संसार दुख की निवृत्ति। ओहो, अब दौड़ो चॉकलेट के लिए कि बहुत अच्छी चॉकलेट मिलने वाली है आपको, तो आदमी दौड़ लगाता है ना। तो ऐसी है, कपिल भगवान ने मां को बोला, मां जिसको आप मोक्ष मोक्ष बोल रहे हो ना, वो क्या है? अरे बोले वो सुख भी नहीं है और वो दुख भी नहीं है। सुख दुख से परे होने का ही नाम मोक्ष है। मदा मदम देव है ना, कष्टम मदा मदम देव, न वो मद है और वो न अमद है, ना वो सुख है और ना वो दुख है। आप जिसको सुख दुख बोलते हैं उसको क्या है? ऐन्द्रिक संवेदना। आप जिसको सुख बोलते हैं ना वो है क्या? वो आप, अरे वो बहुत छोटी चीज है। जिसको आप सुख बोलते हैं ना वो बहुत छोटी चीज है। क्या छोटी चीज है? आपको रसगुल्ला मिला, दिवाली आ गई। ओहो, हाँ, पुराने जमाने में दिवाली को बहुत सारा बनाते थे लोग, खाने पीने की चीजें। तो अब आज बनाता नहीं आदमी? क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि साल भर दिवाली है। मैंने फोन किया किसी माई को, मैंने कहा दिवाली कैसे मन रही है? हाँ, बोले बाबा ठीक मन रही। मैंने कहा आपने कुछ खाने पीने का बनाया कि नहीं? बोले कुछ नहीं बनाया। मैंने कहा क्यों नहीं बनाया? शक्कर पाड़े होते ना मीठे, नमकीन। अरे बोले नहीं। मैंने कहा क्यों? अरे बोले साल भर पड़े रहते हैं, आप कहां से बनाए? पहले दिवाली का आनंद ज्यादा था क्योंकि आदमी जीवन पूरा साल भर वैसा नहीं जीता था। दिवाली को कुछ अलग, हाँ हाँ, क्या भोजन बनाते थे लोग, माताएं महीनों लगी रहती, दिवाली है दिवाली है दिवाली है। ये सुख क्या है? आपने रसगुल्ला खाया और आपकी जीभ थोड़ी झंकृत हो गई है कि नहीं? ऐन्द्रिक संवेदना है ये, ऐन्द्रिक संवेदना। आंख के लिए बहुत अच्छा लगा, हा थोड़ा सा अच्छा लग गया। कान के लिए थोड़ा अच्छा लगा। तो ऐन्द्रिक संवेदना मात्र है सुख, जिसको बोलते हैं वो ऐन्द्रिक संवेदना। स्पर्श जन्य, शब्द जन्य, रस जन्य, गंध जन्य जो संवेदना, उसी का नाम है सुख। और क्षणिक है, ये स्थायी नहीं है। आपको रसगुल्ले बहुत अच्छे लगते हैं तो आपको रसगुल्ले के पहाड़ में जाके बैठा दे, आप कितना दिन खाओ? और बोले बस बस बस, यहां से उठाओ हमको और हमको नमकीन के पहाड़ में जाके रख दो। आप बोलोगे नमकीन के पहाड़ में जाके रख दो भैया, बहुत कृपा होगी तुम्हारी, बहुत कृपा होगी, नहीं तो मर जाएंगे। गया वो सुख गया। और नमक के पहाड़ में जाके रखेंगे तो आप थोड़े दिनों के बाद बोलेंगे उठाओ हमको यहां से और कहां रख दो, और वो मीठे के पहाड़ में रख दो, नहीं तो मर जाएंगे। ये क्या है? ये सुख है, इसको सुख बोलते हैं। और ये सुख ग्रहण करने की जो क्षमता है वो बहुत कम है। आप कितना लंब आप सुख की झंकृति, आप उस सुख को पाना चाहते हैं तो वो सुख संसार वाला, आप उस कितना लंबा पाना चाहोगे? आप भोजन करोगे तो कितना घंटा करोगे, कितना घंटा करोगे? अरे एक घंटा ज्यादा से ज्यादा, दो घंटा, बहुत ज्यादा हुआ तो आप तीन घंटा बैठ के खाते रहो। भैया तीन घंटे तक खाने का आनंद आपने लिया और चौथे घंटे में फिर आप ऊब जाओगे, अरे भैया हटाओ इसको यार, बस हो गया। ये सुख की सीमा है। आप जिस सुख के पीछे पागल है वो सुख नारायण वो स्थायी नहीं है, आपको उससे भी परे हो जाना है। अच्छा, ये संसार का जो सुख है ना, संसार का सुख, ये संसार का सुख है क्या? मैं आपको बता दूं, वस्तुतः इच्छा ही दुख है। और जब इच्छा पैदा हो जाती है तो आप टेंशन में आ जाते हैं। ये सबसे बड़ा जो टेंशन है ना, टेंशन बोल रहा हूं, टेंशन। ये सबसे बड़ा जो टेंशन है ना, और कोई टेंशन है, इच्छा ही टेंशन है। आप अच्छे खासे बैठे थे, अच्छे खासे, और इसी समय फोन आ गया। और फोन आने के बाद उधर से बोला कि भैया तुम आए नहीं अभी, अरे वो बात अभी बाकी रह गई है, समय हो गया है, कब आ रहे हो? ओहो, बेचैन हो गया आदमी, देखता है इधर उधर, परेशान हो गया, टेंशन में आ जाता है। अभी आप बहुत अच्छे बैठे हैं और इसी समय आपको रसगुल्ला खाने की इच्छा हो जाए, आप टेंशन में आ जाओगे। मतलब कोई भी इच्छा पैदा हो गई तो आप टेंशन में आ गए। टेंशन सबसे बड़ा टेंशन तो इच्छा का पैदा होना टेंशन। आपको भूख लगी चाहे वो किसी भी चीज की, आप टेंशन में आ गए। आप वो टेंशन दूर करने के लिए क्या करते हो फिर? अरे आप लड्डू खाओगे, रसगुल्ला खाओगे, और क्या? ये लड्डू खाना, रसगुल्ला क्या खाना है, यह टेंशन दूर करने की दवा है और कुछ नहीं है। इच्छा पैदा हो गई, अब खा लो लड्डू, और लड्डू खा लेते हैं तो सुख मिलता है कि टेंशन दूर होता है, बस और कुछ नहीं। ये इच्छा की निवृत्ति ही इसका प्रयोजन है। जो इच्छा का पागलपन, वासना का जो पागलपन पैदा हुआ है, आपको उसको दूर करना है, खा के पी के देख के छू के सूंघ के। और जैसे जैसे आप खाते पीते सूंघते हो तो वो इच्छा कम होती जाती है, इच्छा का पागलपन कम होता जाता है, और उसको आप बोलते हैं कि मैं बहुत सुखी हुआ। इसलिए आचार्य यम ने कहा कि वो आत्मतत्व न मद है न अमद, न वह सुख है न वो दुख है, वो सुख और दुख से परे हैं, और सुख और दुख से परे होने का ही नाम मोक्ष है। मोक्ष उस तत्व को मेरे बिना कौन जान सकता है, माने मैं जान सकता हूं, मैं जानता हूं, और वो जानी हुई चीज मैं तुमको कहूंगा, कह रहा हूं। जो यद पश्यसि तद्वद, उसका उत्तर यहां उन्होंने दिया। मदन्य, जो मेरे से अन्य कौन उसको जानेगा, माने मैं जानता हूं उसको, मैं जानता हूं, और वो चीज मैं तुमको कहूंगा। आप सीधे बैठ जाएं।
ओम ह्रीम नमः शिवाय, ओम ह्रीम नमः शिवाय, ॐ ह्रीं 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 नमः शिवाय, ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।